आयशा के लिए शेयर्स फिर से हासिल करने के लिए मालविका वसुधा राजवंश को मनाने के लिए उसके पास आई हुई थी। वसुधा को मालविका बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि वो इशिका के साथ बुरा बर्ताव करती थी। वसुधा ने मालविका को पकड़ लिया और ये कहने लगी कि वो इशिका की असली माँ नहीं है। इसी बीच अभिमन्यु और इशिका भी वहां पर आ गए। मालविका के लिए वसुधा से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो रहा था। ऊपर से उसे डर भी लग रहा था कि कहीं उनकी बातें अभिमन्यु और इशिका ना सुन ले। इशिका और अभिमन्यु के आने तक वसुधा ने वही रट लगा रखी थी। उनके आते ही वसुधा की बात काटते हुए मालविका ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, इशिका बेटा, मैं तो तुमसे मिलने के लिए आई थी। मिसेज राजवंश बहुत ज्यादा बीमार हैं। इन्होंने मुझे पकड़ लिया और पता नहीं क्या बड़बड़ाई जा रही हैं। मैं तो बस तुम्हारे लिए गर्मा गर्म सूप लेकर आई थी ताकि इतनी मेहनत करने के बाद तुम बीमार ना पड़ो। मालविका की बात सुनकर अभिमन्यु ने उसकी तरफ घूर कर देखा। इशिका ने भी मालविका की तरफ अजीब नजरों से देखा। उसने कभी भी इशिका के लिए कुछ नहीं किया था और अब उसके लिए सूप बनाकर लेकर आई थी, ये बात उसे काफी अजीब लगी। इशिका ने गहरी सांस ली और सख्ती से कहा, ठीक है, बाहर चलकर बात करते हैं। दादी को आराम की जरूरत होती है, उन्हें विजिटर्स पसंद नहीं। मालविका ने उसकी बात पर हामी भरी और बाहर की तरफ चली गई। उसने मन ही मन राहत की सांस ली कि वसुधा से पीछा छूट गया था। बाहर जाने से पहले इशिका ने अभिमन्यु की तरफ देखा। मैं बस अभी आती हूँ, इशिका बोली और फिर मालविका के पीछे बाहर चली गई। इशिका और मालविका कमरे के आगे ही खड़े थे। बाहर आते ही इशिका ने सीधे सीधे पूछा, दूसरों के सामने ये सूप लेकर आने का और अच्छी माँ होने का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। बताइए, आपको मुझसे क्या काम है जो आपको ये सब करने की जरूरत पड़ रही है। इशिका मालविका का बिहेवियर अच्छे से जानती थी। वो काफी सेल्फिश थी। इशिका ने उससे कोई उम्मीद नहीं लगाई और सीधा सीधा सब पूछ लिया। मालविका ने उसे देखकर तिरछी मुस्कुराहट दी और फिर बोली, ज्यादा कुछ नहीं, बस आयशा की थोड़ी मदद कर दो। कैसी मदद? इशिका ने भौहें चढ़ाकर पूछा। मिसेज वसुधा राजवंश तुम्हें बहुत मानती हैं, उनसे कहो कि आयशा को वो 2% शेयर गिफ्ट में दे दे। तुम्हारे कहने पर अभिमन्यु राजवंश ने राधिका जी के लिए कमरा प्रोवाइड करवाया और फिर वो दवाइयां भी मंगवा कर दी। वो तुम्हारी बात मानते हैं तो अपनी बहन के लिए इतना सा कर दो। देखो, अगर तुमने ये नहीं किया तो वो अपने ससुराल में कभी भी इज्जत से नहीं रह पाएगी, सब उसे ताने देंगे। मुझे डर है कि इस वजह से नक्श और आयशा का प्यार खत्म ना हो जाए, मालविका ने जवाब दिया। पहली बार वो इशिका से थोड़ा नरमी से बात कर रही थी, वो भी इस वजह से क्योंकि उन्हें इशिका की जरूरत थी। पूरी बात सुनने के बाद इशिका के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट थी। उसने उसी अंदाज में कहा, लगा ही था कि अचानक आपका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। खैर, मेरे पास ज्यादा बहस करने का टाइम नहीं है। मेरा जवाब वही है जो पहले था। मैं उसके लिए कुछ नहीं करने वाली हूँ, इशिका ने साफ तौर पर मना कर दिया था। मालविका ने जो प्यार का मुखौटा लगा रखा था वो इतनी ही देर का था। इशिका के मना करते ही वो गुस्से में उस पर बिफर पड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने इतनी मुश्किलों के बाद भी तुम्हें पैदा किया। आज तुम थोड़ी सी सक्सेसफुल क्या होगी तो तुम मुझे मना कर रही हो? मैं सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी। मालविका जैसी घटिया औरत से और उम्मीद भी क्या की जा सकती थी। इशिका हैरान थी कि अब वो क्या करना चाहती है। मालविका जमीन पर बैठ गई और इशिका के पैर पकड़कर धीमी आवाज में बोली, अब मैं तब तक यहां से नहीं उठूंगी जब तक तुम हाँ नहीं कर देती। देखो मैं तुम्हारा किस तरह से तमाशा लगाती हूँ। इशिका कुछ बोलती उससे पहले मालविका ने शोर मचाना शुरू कर दिया। कैसी बेटी हो तुम, अपनी माँ की मदद नहीं करना चाहती। अरे मैं गरीब हूँ, तुम्हें ठीक से नहीं पाल पाई, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम हमारे रिश्ते से इनकार कर दो। ये सब तुम पैसों के लिए कर रही हो ना? वो अमीर औरत मिसेज राजवंश की सेवा पानी कर रही हो ताकि वो अपने पोते की शादी तुमसे करवा दे? ये सही नहीं है इशिका। मैं तो तुमसे मिलने आई थी लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं तो तुमने उन लोगों के सामने हमारे रिश्ते तक से इनकार कर दिया। अपनी गरीब से इस तरह मुंह मत मोड़ो बेटा। मालविका जो तमाशा लगाना चाहती थी वो उसमें कामयाब हो गई थी। आसपास काम करने वाला स्टाफ और उस फ्लोर पर एडमिट हुए पेशेंट के घर वाले वहां इकट्ठा हो गए। वो इशिका के बारे में बातें करने लगे। उनमें से एक बोला, देखो तो कैसी लड़की है, अपनी ही माँ से पल्ला झाड़ रही है। आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, उन्हें रिश्तों से नहीं पैसों से मतलब होता है। एक नर्सिंग स्टाफ बोली, मैंने मिस सिंघानिया को अच्छा समझा था, मुझे लगा कि ये पूरे दिल से मिसेज राजवंश की सेवा कर रही है, लेकिन अब पता चला कि ये सब पैसों के लिए था। कितनी लालची लड़की है, शक्ल से मासूम लगती है और इरादे इतने खतरनाक। उन सब की बातें सुनकर मालविका के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। इशिका बिना किसी भाव के मालविका की तरफ देख रही थी। वो जिंदगी में कितनी भी आगे बढ़ जाए लेकिन मालविका से पीछा छुड़ाना उसके लिए नामुमकिन था। मालविका कुछ देर तक ऐसे ही चिल्लाती रही और फिर भीड़ वहां से हट गई थी। इशिका ने मालविका की आंखों में देखकर सख्ती से कहा, जितना तमाशा लगाना है लगा सकती हो, पूरे दिन यहाँ बैठी रहो, फिर तुम्हारा शोर सुनकर सिक्योरिटी आएगी और तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालेगी। इशिका ने मालविका का हाथ छटका और फिर उसके पास से जाने लगी। मालविका गुस्से में खड़ी हुई और बड़बड़ाकर बोली, तुम्हारी बदतमीजियों का तुम्हें मैं सबक सिखाती हूँ, अब बचकर दिखाओ मुझसे। बोलते हुए मालविका ने गुस्से में सूप की बोतल खोली, वो इतना गर्म था कि उसके अंदर से भाप निकल रही थी। मालविका की बात सुनकर इशिका के कदम वहीं रुक गए। वो पलटकर उसकी तरफ देखती उससे पहले मालविका ने बिना सोचे समझे सूप इशिका के पीछे फेंक दिया। इशिका ने महसूस किया कि किसी ने उसे पीछे से कसकर पकड़ रखा है। इशिका हैरानी से पीछे मुड़ी तो उसके पीछे अभिमन्यु था जिसने उसे पकड़ा हुआ था, और मालविका का फेंका हुआ गर्म सूप अभिमन्यु की पीठ पर जाकर गिरा था। सूप इतना गर्म था कि अभिमन्यु की पीठ से भाप निकलने लगी, उसका शर्ट उसकी पीठ से चिपक गया। अभिमन्यु की आंखें लाल हो गई थी। इशिका ने कांपती आवाज में पूछा, तुम ठीक हो ना? अभिमन्यु ने पलकें झपकाकर धीरे से कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। उसने अभी भी इशिका को कसकर पकड़ रखा था। इशिका ने गर्दन टेढ़ी करके मालविका की तरफ गुस्से में देखा। अभिमन्यु के बीच में आने की वजह से मालविका बुरी तरह डर गई थी। मालविका डरते हुए हड़बड़ाकर बोली, मिस्टर राजवंश, माँ मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मैं आपको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी, आप बीच में आ गए। मालविका जल्दी से वहां से दौड़कर जाने लगी। उसे भी एहसास था कि उसने इशिका के चक्कर में किसे हर्ट कर दिया था। मालविका की इस हरकत के बाद फिर से वहां लोग इकट्ठा होने लगे और अभिमन्यु से उसके बारे में पूछने लगे। किसी ने मालविका की तरफ ध्यान नहीं दिया, भीड़ का फायदा उठाकर वो गायब हो चुकी थी। वसुधा जल्दी से अभिमन्यु के पास आई और उसके शर्ट के बटन खोलने लगी। वो घबराते हुए बोली, मुझे इसे देखने दो, कहीं ज्यादा तो नहीं चला तुम्हें, छाले तो नहीं हो गए हैं लड़के? अभिमन्यु ने वसुधा का हाथ साइड किया और शर्ट निकालने लगा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो बिल्कुल शांत था। अभिमन्यु ने अपनी शर्ट निकालने के बाद अपनी पीठ वसुधा की तरफ की। उसकी बॉडी काफी मस्क्यूलर थी, इशिका उसकी तरफ देखना नहीं चाहती थी। वो अपनी नजरें घुमाना ही चाहती थी कि तभी उसकी नजर अभिमन्यु की लाल हो चुकी पीठ पर पड़ी। उस पर हल्के छाले उभर आए थे। आप रूम में चलिए, मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ, वहाँ खड़ी नर्स ने कहा।
अभिमन्यु बिना कुछ बोले कमरे के अंदर चला गया। उसके पीछे इशिका और वसुधा भी थी। वो एक वीवीआईपी रूम था जो बिल्कुल किसी लग्जरियस होटल रूम की तरह था। वहाँ पेशेंट के रिलेटिव की रहने के लिए एक और अलग अटैच 5-स्टार होटल रूम जैसा कमरा बनाया गया था। नर्स के दवाई लेकर आते ही वसुधा ने उसके हाथ से दवाई छीनते हुए कहा, तुम बाहर जाओ, ये बिना शर्ट के शर्मा रहा है, मेरी बहू कर लेगी। वसुधा ने दवाई इशिका के हाथ में रख दी थी और खुद वहां से दूसरे कमरे में चली गई। जाने से पहले वो एक बार फिर तेज आवाज में बोली, बहू इसे संभाल लेना। वसुधा के जाने के बाद कमरे में सिर्फ अभिमन्यु और इशिका अकेले ही खड़े थे। कुछ पल उन दोनों के बीच बिल्कुल चुप्पी छाई रही। फिर अभिमन्यु ने धीरे से कहा, दादी कई बार बच्चों जैसी हरकतें कर देती है, मैं नर्स को बुला लेता हूँ। अभिमन्यु जाने को हुआ तभी इशिका ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, मैं कर दूंगी। अभिमन्यु ने उसकी बात पर हामी भरी और उसकी तरफ पेट करके खड़ा हो गया। सूप वाकई काफी गर्म था और अभिमन्यु की पीठ जल गई थी। वो धीरे धीरे उसकी पीठ पर दवाई लगा रही थी। इशिका को ये सोचकर बुरा लग रहा था कि अभिमन्यु उसे बचाने के लिए खुद बीच में आ गया। वहीं अभिमन्यु ये सोच रहा था कि अगर वो बीच में नहीं आता तो आज उसकी जगह इशिका का ये हाल होता। दोनों के बीच एक अजीब चुप्पी छाई हुई थी। तभी इशिका ने अचानक कहा, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वो अभिमन्यु की दवाई लगा रही थी वो कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर सिमट रहा था। अभिमन्यु की आंखें दूसरी तरफ बंद थी। उसने आंखें खोली तो सामने के आईने में उसे इशिका का चेहरा दिखाई दे रहा था जो काफी परेशान हो गई थी। अभिमन्यु ने बिल्कुल धीरे से जवाब में कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, ये ज्यादा दर्द नहीं कर रहा है। इशिका की दवाई लगाते ही अभिमन्यु ने दूसरी शर्ट पहन ली थी। अभिमन्यु ने इशिका की तरफ देखकर धीरे से कहा, थैंक यू मिस सिंघानिया। कोई बात नहीं, इशिका बोली। वो कुछ भी कहने से हिचकिचा रही थी। उसने कुछ पल रुककर कहा, आपको इस तरह बीच में आकर मेरे लिए खुद को हर्ट करने की जरूरत नहीं थी। अगर ज्यादा चोट लग जाती तो दादी परेशान हो जाती। अगर तुम्हें चोट लगती तो दादी और ज्यादा परेशान होती, अभिमन्यु ने जवाब दिया। फिर भी मैं उनकी कुछ नहीं लगती हूँ, इशिका आगे बोली। तभी अभिमन्यु ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए सख्ती से कहा, आप भूल रही हैं मिस सिंघानिया कि आप मेरी दादी की बहू है और मेरी पत्नी। अभिमन्यु के शब्द इतने सख्त थे कि इशिका के दिल की धड़कनें शोर करने लगी थी। जब उसने उसे अपनी पत्नी कहा तो क्या अभिमन्यु सच में इशिका को अपनी पत्नी मानने लगा था? वो एक टक अभिमन्यु की आंखों में झांक रही थी। अचानक इशिका के दिमाग में वो लम्हा ताजा हो गया जब मालविका ने बिना सोचे समझे सूप का बोतल फेंक दिया था। उसने गहरी सांस ली और बाहर जाने लगी। अभिमन्यु पीछे से बोला, कहाँ जा रही हो? इशिका ने पलटकर अभिमन्यु की तरफ देखा और सख्त आवाज में कहा, जिसने भी ये किया है उससे बदला लेने। अभिमन्यु इशिका को रोकना चाहता था, लेकिन वो वहां से चली गई। इशिका कमरे से बाहर निकलते हुए खुद से बड़बड़ाकर बोली, उसने मेरे साथ पहले भी ऐसा बर्ताव किया है, मेरे साथ वो कुछ भी करे चलेगा, लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई अभिमन्यु को हर्ट करने की? आज मैं उसे बताऊंगी कि हमेशा मैं शांत नहीं रहने वाली हूँ। मालविका को ढूंढते हुए इशिका राधिका के कमरे में पहुंची, लेकिन वो वहां पर नहीं थी। इशिका बाहर निकली तो उसने देखा कि आयशा किसी आदमी के साथ कहीं जा रही थी। वो आशीष था। इशिका ने उन दोनों का पीछा करना शुरू कर दिया था। आयशा और आशीष आगे जाकर छुपकर बात कर रहे थे। आशीष ने आयशा की तरफ देखा और गंदी हंसी के साथ कहा, मेरी प्यारी भांजी, तुम जानती हो ना मुझे पैसों की जरूरत पड़ती रहती है और मेरे पैसे खत्म हो गए हैं। मुझे इस बार पॉकेट मनी नहीं मिली है, हर बार की तरह पैसे मिलते ही भिजवा दूंगी, आयशा ने गुस्से में कहा। आयशा को वो दिन याद आ गया जब सालों पहले न्यू ईयर पार्टी से पहले आशीष उसके पास आया और उसे मालविका की बेटी होने की सच्चाई बताई। उसने उसे कुछ सबूत भी दिखाए थे। वो तब से उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर आयशा उसे पैसे नहीं देगी तो वो राधिका और आदर्श को सब बता देगा। मजबूरन आयशा को उसे पैसे देने पड़ रहे थे। कितनी बार बताऊं कि मैं तुम्हारी पॉकेट मनी का इंतजार नहीं कर सकता, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे एक फिक्स डेट पर पैसे चाहिए, आयशा ने आयशा को घूरते हुए कहा। मैं हर बार तुम्हें पैसे भिजवाती हूँ, इस बार भी दे दूंगी, प्लीज ऐसा मत करो, आयशा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। आयशा के इतना गिड़गिड़ाने पर भी आशीष पर कोई असर नहीं हुआ। वो सख्ती से बोला, मैं तुम्हें और टाइम नहीं दे सकता हूँ, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो साफ बता दो, मैं इशिका के पास चला जाऊंगा। इस सच्चाई को बताने के बदले वो मुझे काफी सारे पैसे देगी, सुना है आजकल वो राजवंश फैमिली की काफी खास हो गई है। आयशा की बात सुनकर आयशा ने गुस्से में मुठ्ठियां कस ली। तभी कोई उनकी तरफ चलकर आया, वो इशिका थी। उसने आशीष की कुछ बातें सुन ली थी। इशिका ने उनके पास जाकर सख्त आवाज में कहा, कौन सी सच्चाई की बात कर रहे हो तुम लोग? इशिका को अचानक वहां देखकर आयशा का चेहरा डर से पीला पड़ गया था, तो वहीं आशीष के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इशिका ने कुछ बातें तो सुन ली थी, अब जरूरत थी तो आशीष के सच बताने की। पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, क्या लगता है आशीष इतनी आसानी से इशिका को सब बता देगा? वैसे इशिका को अगर थोड़ा सा भी शक हुआ तो वो खुद पता लगा लेगी। चलिए अगले पार्ट पर मिलते हैं।